मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, कल के ही विषय को मैं आज आगे बढ़ाना चाहूंगा और इसकी शुरुआत भी मैं अपने एक निजी अनुभव से जो मेरे अपने जीवन से संबंधित है करने की सोच रहा हूं। आशा है आप इसकी इजाजत मुझे देंगे। मैंने एमए किया ही किया था, एमए किया और मुझे पता लगा कि स्टेट सिविल सर्विस जैसी कोई परीक्षा होती है जिसके जरिए लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं और इस तरह की नौकरियां मिलती हैं। देखिए, मैं तो एक छोटी सी दुकान करता था और उस समय मेरी दुकान पर एक सेलटेक्स इंस्पेक्टर आया करते थे, क्योंकि दुकान थी तो सेलटेक्स देना पड़ता था। तो मैं देखता था कि उन सेलटेक्स ऑफिसर की बहुत ज्यादा लोग प्रशंसा करते थे, उनका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे और आगे पीछे घूमते रहते थे। थे वो सेलटेक्स इंस्पेक्टर, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी। मैं एक दुकानदार था और चूंकि मेरी कम्युनिटी दुकानदारों की ही थी तो दुकानदारों को तो सेलटेक्स इंस्पेक्टर की प्रतिष्ठा और सम्मान करना ही करना था, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़े अफसर थे। तो मेरे दिमाग में डेफिनेटली यह बात तो रहती थी कि नहीं, दुकानदारी से ज्यादा अच्छी तो सरकारी नौकरी है, लेकिन आपकी अपनी सीमाएं हैं। तो जब मैंने एमए कर लिया तो एमए करने के 3 दिन बाद ही उसी कॉलेज में मुझे नौकरी मिल गई। तो एक बात तो यह हो गई कि चलो मुझे दुकानदारी से अब मुक्ति मिल जाएगी, अब पढ़ाने का काम मिल जाएगा और जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था। पढ़ाना तो मेरे लिए शायद पूजा से भी ज्यादा बढ़कर है। तो दोस्तों, मैं खुश हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि भले ही वह नौकरी कॉलेज की कर रहा था, पढ़ा कॉलेज में रहा था, लेकिन अपने जानने वालों के बीच में तो मेरी प्रतिष्ठा एक पढ़ाने वाले गुरुजी की ही तरह थी। उन्हें कुछ लगा ही नहीं कि कोई अच्छी बात हो गई है, कोई बड़ी बात हो गई, कॉलेज में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। वो मेरे जो अपने सगे चाचा थे जो मेरे पिताजी से छोटे थे, वो तो गुरुजी कहते थे। कोई पूछता था कि भाई विजय क्या कर रहा है, तो गुरुजी बन गया है। तो मुझे लगा कि यार, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और मेरी जो सैलरी है सेलटेक्स इंस्पेक्टर से ज्यादा भी है, लेकिन मुझे कोई जान ही नहीं रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबकि सेलटेक्स इंस्पेक्टर को लोग इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो पता लगा कि स्टेट सिविल सर्विस होता है, उसमें बैठ जाओ। तो मुझे पता लगा कि स्टेट सिविल सर्विस की एक परीक्षा होती है और अगर उसमें तुम पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरी उम्र शायद 21.5-22 साल के बीच की ही रही होगी कि मैं उस परीक्षा में बैठ गया बिना कोई बहुत अलग से तैयारी के। मैंने कहा कि बैठ जाते हैं, जानकारी तो देखी कुछ थी नहीं और उस समय कहां कोचिंग वगैरह कल्पना नहीं कर सकते, जानकारी नहीं होती थी, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है और वो भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में, जिसकी आबादी उस समय केवल सोच करके देखिए कि 50-52 हजार थी, तो वहां क्या कोचिंग होगी, कोई गाइड करने वाला नहीं, जानते तक नहीं थे कि ये कोई ऐसी परीक्षा होती भी है। तो दोस्तों, मैं बैठ गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं परीक्षा देने गया, जबलपुर गया, वहां एग्जाम दिया और सफल भी हो गया, रिटेन में क्वालिफाई कर गया। उस समय सीधे मेंस ही होता था, प्री जैसा कोई एग्जाम नहीं होता था। इंटरव्यू कॉल आ गया, मैंने कहा कि चलो अब इंटरव्यू में बैठ जाते हैं, बैठना ही था। इंटरव्यू देने गए तो मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ, इससे खराब इंटरव्यू शायद ही किसी का होता। तो मैंने ये तो मान लिया कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होना है, ये मैंने मान लिया था। मैंने मन ही मन ये भी सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो शायद जो कुछ भी नौकरी मुझे मिलेगी उसके प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि यार, जो मेरा इतना खराब इंटरव्यू हुआ है उसमें भी अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मेरे से जो और खराब होंगे वो कितना खराब हो सकते हैं, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये मेरे मन में था। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कई लेवल के पद होते हैं, एग्जाम एक होता है लेकिन उसमें कई तरह की नौकरियां मिलती हैं, लेकिन मैंने भरा सिर्फ डिप्टी कलेक्टर पद के लिए था और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक ही हुआ करता था और उस समय डिप्टी कलेक्टर के सिर्फ शायद 2 ही पद थे जनरल कैटेगरी में। मेरा नहीं हुआ तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जब नहीं हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई या मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, नहीं, मुझे दुख हुआ, डेफिनेटली दुख हुआ। उस समय को अगर मैं याद करता हूं तो काफी कुछ दुख हुआ, उबरने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कोई जिंदगी खत्म हो गई हो या दुनिया उजड़ गई हो और सब सुन सपाटा हो गया हो। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास पढ़ाने की नौकरी तो है, दुनिया चाहे इसे जो भी समझती हो, मेरे घर वाले, परिवार वाले, मेरी कम्युनिटी के लोग चाहे इसके प्रति जो भी भावना रखते हो, लेकिन मैं तो इसे प्यार करता हूं। तो अगर मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये तो मुझसे कोई भी छीन नहीं लेगा। और साथ ही साथ मैंने एक और भी फैसला किया कि नहीं, अब मैं इस परीक्षा में नहीं बैठूंगा, मैं केवल पढ़ाऊंगा ही। तो इसके बाद फिर पता लगा कि कुछ समय के बाद खबर आई कि साहिब 79 में जो है कि आईएएस की जो सिविल सर्विस जो परीक्षा होती है वो हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हैं। स्टेट सिविल सर्विस की तो हिंदी मीडियम में दे ही सकते थे। तो मैंने कहा कि यार अब ये हिंदी मीडियम हो गया, अंग्रेजी तो अपने को आती नहीं, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते। हालांकि दिमाग में ये बात थी कि उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसमें भी सोच लो, ये तो उससे भी बड़ी चीज है। मैंने कहा कि ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई किया, हो गया। दोस्तों, जिस पर मैं अभी आप सबसे बात कर रहा हूं, बस उस पर आप विचार कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप एक जगह से अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं तो हो सकता है कि कोई बड़ी जगह आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, बशर्ते कि आप अपनी यात्रा को जारी रख सकें। ये जहां आपको अनफिट घोषित किया गया है, इसके लिए कुछ तो आपने किया होगा, मेहनत तो की होगी। ऐसे तो नहीं कि गए और एकदम से कुछ हो गया और आपको अनफिट घोषित कर दिया गया। कुछ तो आपने किया होगा, वो काम आता है। तो दोस्तों, अनफिट का अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि अब हमारा सर्वाइवल रह ही नहीं गया है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।